बहुत ही शिद्दत के साथ इस बात में यकीन रखता हूँ कि हर काम का अपना एक वक्त मुकर्रर है और उस वक्त मुकर्रर पर काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। तो उन दिनों आप बड़ी शिद्दत से मुझे ये मशवरा देते थे कि मैं तकरीर और तहरीर में चला जाऊं, और मैं उतनी ही शिद्दत से दूर भागता था। अब ये खुद ब खुद ही उधर को मैं चला गया बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के। तो देखिए फैज साहब, रूहानियत में मुशाहिदा क्या है, बल्कि दुनियावी जिंदगी में भी मुशाहिदा बैन ही वही है जो रूहानियत में है। मुशाहिदा हम उसको कहते हैं कि जैसे आप एक सड़क पर चलते हैं, जा तो रहे हैं अपनी राह को, आप अपनी मंजिल को सफर कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि आप सड़क पर नजर जमाए हुए हैं, लेकिन सड़क के दोनों तरफ जो फीचर्स हैं, सड़क से दूर हट के जो आबादी है, वहाँ के रहने वाले लोगों के अहवाल, उस सड़क के दोनों तरफ पैदा होने वाली वेजिटेशन, ग्राउंड फीचर्स, वो सब आपकी नज़र में होती है और आइंदा के लिए याद रहती है कि अगर मुझे उस राह पे जाना हुआ तो वहाँ सड़क की कंडीशंस ऐसी हैं, रोड कंडीशंस, ट्रैफिक कंडीशंस, इनहेबिटेशन, ये तमाम आपकी नज़र में रहती है। और आपको ये भी याद रहता है कि रोड साइड कितने मोटल्स हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने लेआउट पॉइंट्स हैं जिन पर रुक के थोड़ा सा रेस्ट किया जा सकता है। ये मुशाहिदा है। और जब आप पैदल पे मुख्तलिफ सड़कों पर सफ़र करते हैं तो बहसियत मुसाफिर के आप तजर्बाकार मुसाफिर कहलाते हैं। और फिर अगर उन राहों के बारे में कोई जिक्र करे तो आप पूरे वसूक के साथ उसकी तस्दीक या उसकी तर्दीद कर देते हैं, या उन सड़कों पर नए राहरू जो हैं उनको पहले से वार्न कर देते हैं कि इन राहों पर ये दिक्कतें आएंगी आपकी, और उन नए चलने वालों में कुछ लोग उसे यकीन करेंगे, कुछ उसको यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब उन राहों पर चलते हैं तो उसकी तस्दीक हो जाती है कि इस आदमी ने हमें सही गाइड किया था। तो यूं गाइड वजूद में आने लगते हैं कि आइंदा फिर लोग उसी आदमी से जाके पूछते हैं कि वो उन राहों से गुजरा हुआ है, वो जो भी तला देगा वो दुरुस्त होगी। ये मुशाहिदा है। रूहानियत में मुशाहिदा वारदात का है, सैर के जरिए है। आप जैसी जैसी रूहानी कैफियत से गुजरते हैं, जिस जिस मंजिल की सैर करते हैं, उस जगह का मुशाहिदा करते चले जाते हैं और वो आपके तजर्बे में, आपके इल्म में इजाफा होता चला जाता है। तो यूं इल्म के इजाफे के लिए मुशाहिदे का होना ज़रूरी ठहरा। एक बार पढ़ाई के दौरान मैंने एक अजीब तरह की बिल्डिंग देखी और उससे इहतमाल ये होता था, फौजी मैदान जंग में पुख्ता मोर्चे बनाते हैं जिसको पिल बॉक्स भी कहा जाता, ये एक 10x10 का कमरा समझ लीजिए वो होता, और इसकी मोटाई तकरीबन 36 इंच होती है। ये कंक्रीट और सीमेंट से बनाया जाता, ज़मीन से तकरीबन 6 इंच ऊपर। इसमें तीन तरफ फायरिंग के लिए सुराख रखे जाते हैं जो बाहर बहुत चौड़ा होते हैं, तकरीबन कोई 4 फुट, उसके बाद वो दर्जा बदर्जा कम होते होते अंदर की दीवार तक जाते जाते वो सिर्फ 6 इंच करा जाता। तो वो जो पढ़ाई के दौरान मैं सैर को निकला तो वहाँ जो बिल्डिंग्स देखी मैंने, वो साइज में तो बहुत बड़ी थी, लंबाई चौड़ाई में, ऊंचाई में भी ज़्यादा थी, लेकिन उसके रोशनदान और दीवारों की साख्त कुछ पिल बॉक्सेस से मिलती थी, और उन रोशनदानों के पीछे कुछ शक्लें नज़र आ रही थी, वो शक्लें भी कुछ ज़रा मुख्तलिफ थी इंसानों से थोड़ी सी। अब वो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है और कौन सी जगह है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ इंसान को समझ नहीं आती वो अपने मुर्शद साहब से पूछता है। तो मैंने बड़े शाह साहब क़िबला से ज़िक्र किया कि हजूर ये ऐसी बिल्डिंग देखी और ऐसी शक्ल के इंसान देखे, तो ये क्या था। तो कहने लगे ये तो फलां अकलीम थी, उसकी सैर को तुम गए। एक लम्हे में जवाब दिया उन्होंने। तो कुछ अरसे के बाद रूहानी इल्म के किसी और जरिए से उस बात की तस्दीक हो गई कि वो वाकई वही अकलीम थी जो मुझे शाह साहब ने पॉइंट आउट की थी। तो मैंने फिर बड़े शाह साहब से कहा कि हजूर वो तो इस जरिए से भी उसकी तस्दीक हो गई, वो वाकई वही अकलीम थी जो आपने फरमाया। तो कहने लगे कि मियाँ अगर इंसान खुद उन राहों से गुजरा है तो जब उससे कोई सवाल करता है तो उसका जवाब वो फिलफौर दे देता है, क्योंकि वो उन राहों से गुजरा है। अगर उन राहों से गुजरा ही नहीं तो सवाल का क्या जवाब देगा, वो आए बाएं शाएं करेगा। ये मुशाहिदा है। तो मुजाहिदे के नतीजे में बहुत सी चीजें हासिल होने लगती हैं इंसान को, लेकिन बुनियाद वही है, मुशाहिदा। मुजाहिदा ख्वाब मुजाहिदा इबादात का हो या नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा हो। अब जहां एक फर्क आता है आजकल, वो फर्क ये है कि हम मुजाहिदा इबादात के रेफरेंस से तो करते हैं जो कि दर हकीकत रियाजत है, उसका असल नाम रियाजत है, तो हम रियाजत में मुजाहिदे पर तो चले जाते हैं, लेकिन नफ्स के खिलाफ मुजाहिदे में हम पूरे नहीं उतर पाते। वो इस तरह से कि बड़ी चीजों पर तो हमारी नजर रहती है, रोजा रख लिया हमने, खाना पीना छोड़ दिया, नमाज में पाबंदी कर ली, उर्फ़े आम में जो चीज़ें झूठ कहलाती हैं उनसे इज्तनाब कर लिया, लेकिन छोटी छोटी वादा खिलाफियों में मुबतला हो गए, छोटे छोटे झूठ में मुबतला हो जाते हैं और उसका हमें एहसास नहीं होता कि हम झूठ में मुबतला हो गए। और सबसे ज़्यादा जो हम पिट जाते हैं वो तवक्कल बर रब है, उस पर पिट जाते हैं रोजे की हालत में भी। ये चीज हमारे जहन से निकल जाती है, वैसे तो एक हमारे पास बड़ा अच्छा एस्केप मौजूद है कि कसूर हम खुद करें, गलत काम हम खुद करें, वह इल्ज़ाम बड़ी खामोशी से शैतान को दे दें कि शैतान ने बहका दिया हमें, वो एस्केप तो है। तो जरा सी किसी काम में मुश्किल आएगी तो हम रब पे भरोसा रखने की बजाय दौड़े दौड़े दुआ कराने वाले आदमी के पास चले जाएंगे, किसी पीर साहब के पास, किसी तावीज़ और जादू करने वाले के पास के साथ, देखिएगा ये क्या हो गया, ये तो मकान बेचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं 15 दिन में, अब ईद आ रही है तो पैसे कहाँ से आएंगे, मकान बिकेगा तो पैसे आएंगे। अब ये नहीं मालूम कि उनके इन जुमलों में छुपा क्या है। ये नफ्स के मुजाहिदे के खिलाफ बात हो गई। रिस्क बाम पहुंचाने वाला रब है और हमारे रिस्क का ताल्लुक किसी चीज के बिकने न बिकने से नहीं है, वो तो रब के जिम्मे है, रिस्क उसने देना है। फिर हम जो ये कहते हैं कि साहब मकान नहीं बिकेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे तो रब ने देने हैं, वो हमारी जरूरियात को खूब जानता है, हमसे बेहतर जानता है, और उसको ये भी मालूम है कि किस पॉइंट से हमारा नुकसान शुरू हो जाएगा। हमारा काम तो है सिर्फ हाथ पांव हिलाते रहना, कोशिश करते रहना। अब वो रोजे की हालत में रब पे भरोसे से बहुत दूर चला गया। अब किसी को मैं कह दूंगा कि अच्छा तुम चलो मैं अभी आ रहा हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि मैं आधे घंटे एक घंटे से पहले फारिग नहीं हो सकता, तो जानते बूझते हुए भी मैंने गलत बयानी कर दी और गलत वादा कर लिया जो पूरा हो नहीं सकता। ये मुजाहिदा जो है नफ्स के खिलाफ, ये ज्यादा जरूरी है बनिस्बत दूसरे मुजाहिदे से, वजीफे किए जाएं, चिल्ले काटे जाएं, उससे ज्यादा सख्त मुजाहिदा ये है। और इस पर ज्यादा जोर आना चाहिए कि अपने रब पर भरोसा, तो जो ही रब पर भरोसा पैदा होता है, अल्लाह में हम ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, तो दुनिया बदलने लगती है हमारे लिए और जिंदगी बड़ी आसान हो जाती, बहुत आसान, कि समझ ही नहीं आता कि कितनी आसानी से गुजर गई जिंदगी सब। एक सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है और दूसरे मुल्कों से भी इस सिलसिले में 4 या 5 ईमेल्स आई, यहाँ भी सवाल किया, वो मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ आज ईद मिलादुन्नबी के ज़िम्न में, कि इसका मनाना जायज़ है या ना जायज़। तो इस ज़िम्न में मेरी गुजारिश ये है कि इसकी शरई हैसियत क्या है, फतवा तो कोई आलिम ही देंगे जो मुजाज हैं फतवा देने का, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी पोजीशन ऐसी ही है कि अगर एक साहब इंतकाल कर जाएं, उनके चार पांच बेटे हैं, उनके इंतकाल करने के बाद एक बेटा इस याद में कि उनके वालिद जो इस दुनिया में नहीं रहे वो आज के दिन पैदा हुए थे, तो वो अल्लाह के नाम पर गुरबा में खाना तकसीम कर देते हैं, मुस्तहिक लोगों में कपड़े बांट देता है, इस नियत से कि जो कुछ ये अल्लाह के नाम पर कर रहा है वो इसका सवाब उनके वालिद की रूह को मिले, तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। दूसरा बेटा ये कहता है कि नहीं साहब, वो तो पैदा हुए थे, अल्लाह ने भेजा था दुनिया में, अल्लाह उन्हें वापस ले गया, तो ठीक है। तीसरा बेटा कहता है कि साहब ठीक है, आज के दिन पैदा हुए थे तो कुरान खानी करवा दी जाए, उसका सवाब अपने वालिद की रूह को पहुंचा देता। एक साहब बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, तो इसमें यह तो अपनी खुशी की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं, हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि हमें उन्होंने सही राह दिखा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन अगर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है तो मेरे नज़दीक तो उसमें कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर एक एहतियात कर ली जाए कि उन कामों से उसमें इज्तनाब किया जाए, उनसे बाज रहा जाए जिनको इस्लाम ने कतई तौर पर मना किया है या जो इस्लाम में नापसंदीदा हैं, हुलरबाजी है या इसी तरह की जो इंसान के वक़ार से गिरी हुई हरकतें हैं वो ना की जाएं उसमें। और बाकी किसी तरह किसी चीज़ को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें दखल बहुत बड़ी हद तक उस इलाके की लोकल ट्रेडिशंस और उसकी कल्चरल वैल्यूज़ उसको होगा। अब बिल्डिंग्स पर चरागाह करने का रिवाज दुनिया के बहुत ही कम मुल्कों में होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी मुल्क में नहीं होगा, क्योंकि इतनी कतईयत के साथ मुझे इल्म नहीं, लेकिन ये मुझे मालूम है कि ज़्यादातर इसका रिवाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। और उस चरागाह की रवायत जो इसकी जो दाग बेल पड़ी इस रवायत की, वो राम के जन्मदिन की वजह से पड़ी है कि उसकी दुनिया में उतरने की खुशी में हिंदू चरागाह करते थे। तो उससे ये, चूंकि हिंदूज़म बहुत ही पुराना मज़हब है, दुनिया का सबसे पुराना तरीन मज़हब है, और इसके बारे में एक रवायत तो ये है कि 5000 साल पुराना है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इससे ज़रा ज़्यादा पुराना है, सबसे कदीम मज़हब है ये। और ये हिंदूज़म आया उस वक्त दुनिया में जब इंसान ज़हनी तौर पर अभी इर्तका की इब्तदाई मनाजिल तय कर रहा था, बहुत अर्ली स्टेज पर था इर्तका के। यही वजह है कि एक तो हिंदुइज्म की जो मजहबी रिचुअल थे वो अपनी इब्तदाई शक्ल के थे, और फिर दूसरी बड़ी बात ये हुई कि चूंकि इंसान उस वक्त ज़हनी तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं था बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से इसकी जो लिविंग कंडीशंस थी उसके नतीजे में पैदा होने वाले खौफ और तशक्कुर दोनों ही चीज़ों ने कुछ रसूमात को जन्म दिया जो बाद में हिंदुइज्म का हिस्सा बन गई, उस मज़हब का हिस्सा बन गई। जैसे सांप की पूजा होती है, सांप को दूध पिलाते हैं हिंदू, ये आउट ऑफ फियर हो गया, सांप का खौफ इंसान के लिए बहुत था, तो ये उसको रिश्वत के तौर पर उसकी पूजा भी करना शुरू कर दी, उसे दूध भी पिलाना शुरू कर दिया। गाय से, चूंकि उन दोनों गाय एक ऐसा जानवर था जिसके ज़रिए से लाइवलीहुड कमाते थे हिंदू और ज़िंदगी का बंदोबस्त चलता था, उसको गौ माता का नाम दे दिया। ये इंसान के ज़हनी तौर पर बहुत निचली सतह पर होने के नतीजे में और इल्म नॉलेज के बहुत छोटा लेवल होने की वजह से ये चीज़ें हिंदू मज़हब में दर आईं। तो राम के ज़मीन पर उतरने की खुशी में इन्होंने जो चरागाह करना शुरू किया, दिए जलने से वो रवायत चली जो अब ماڈرن صورت اختیار کر گئی ہے، یا آہستہ آہستہ برِ صغیر کا ایک لازمی جز بن گیا کہ جہاں کوئی خوشی کا موقع آیا وہاں بلڈنگز پر چراغاں ہونے لگا۔ پاکستان بن جانے کے بعد بھی ہم نے، یا یوں کہیے کہ ہم میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور انہیں سیدھا راستہ نظر آ گیا اور انہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا، انہوں نے بھی اپنا مذہب تو تبدیل کر دیا، مذہبی ریچولز تو بدل گئے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو کلچر کا حصہ تھیں وہ ایڈاپٹ اسی طرح کی انہوں نے اور اس کو تبدیل نہیں کیا۔ اسی لیے ہماری جو شادی کی رسومات ہیں اس میں سوائے ایک نکاح کے باقی سب کے سب، ہمارے پرانی بیک گراؤنڈ ہندوؤں کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے نتیجے میں وہ رسومات سامنے آ گئی ہیں، اب وہ شادی کا حصہ ہے۔ ایک نکاح اور ولیمہ وہ اسلامی ہیں، باقی تو سب رسومات ہیں۔ اسی طرح موت کے سلسلے میں بہت سی رسومات ایسی ہیں جو اسلام میں اس کی کوئی شرائط نہیں ہے کہ یہ ہونی چاہیے، وہ اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم شادی کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں خوشی کے اظہار کے لیے، تو 12 ربیع الاول کے سلسلے میں اگر چراغاں کر دیا جائے تو خوشی کا اظہار ہے، وہ کسی مذہب کی نقل نہیں ہم کر رہے ہیں، وہ ہماری ایک کلچرل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہے، تو اس پر اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، میں اس پہ فتویٰ نہیں دے رہا کیونکہ میں فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ اس کا بہترین طریقہ میرے نزدیک 12 ربیع الاول کو منانے کا تو یہ ہے کہ اس دن ایک تو قرآن پاک پڑھوایا جائے، خود بھی پڑھا جائے، اہل خانہ سے بھی کہہ کے پڑھا جائے، اور اللہ کے حضور یہ درخواست کی جائے کہ یا باری تعالیٰ تیرے کلام پاک کو تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے، اس ثواب کو تو میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر، یا یوں ہے کہ میں تیرے حضور اسے بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں ہماری طرف سے لکھ دے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، رب تعالیٰ نے ایک بات پہ بہت زور دیا ہے، وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانے پہ، مساکین کو کھانا کھلانے کا، غربا کو کھانا کھلانے کا۔ تو اس دن جتنی استطاعت ہے وہ غربا اور مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے اللہ کے نام پر، اور پھر اللہ کے حضور یہ عرض کی جائے کہ یا باری تعالیٰ، میں نے یہ تیرے نام پر جو تیرے بندوں کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو اسے قبول فرما، اور اس کا ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کر لیا جائے۔ اس طرح کے وہ کام جس میں جس کی تلقین رب کی طرف سے بھی ہے اور جس کا ثواب بھی بہت ہے، وہ تمام کام اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اور اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں، تو میرے خیال میں عین اسلامی طریقہ ہوگا۔ باقی رہ گئیں وہ ہلڑ بازی اور بھنگڑا اور ایسی باتیں، تو وہ تو میں نے خود بھی پہلے عرض کیا کہ اللہ بہت باوقار ہے اور وہ باوقار لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذاتی طور پر بہت باوقار تھے، اور آپ کا ایک ایک فعل بڑا باوقار تھا، تو ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہوئے، آپ کی پیدائش کا دن مناتے ہوئے، کوئی ایسی ہماری حرکت نہیں ہونی چاہیے جو انسانی وقار کے خلاف ہو۔ تو بھنگڑا اور سڑک پر ہلڑ بازی وہ انسانی وقار سے گری ہوئی حرکتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے راہ پر چلنے کے آداب کے بارے میں، ان آداب کو مد نظر رکھا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی، ان آداب کے خلاف ہم سے کوئی حرکت نہ ہونے پائے۔ ہم دوسرے جو روڈ یوزرز ہیں ان کے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بنے، ٹریفک کے فلو میں کوئی کمی نہ آنے پائے، اس میں کوئی دقت نہ آنے پائے، رکاوٹ نہ بن جائے، دوسروں کے لیے ہم سہولت کا باعث بن جائیں، یہ ملحوظ خاطر رہے۔ تو میرے خیال میں تو اس کو اس طریقے سے منانے میں، جشن منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
जो है इंडिविजुअल या फैमिली लेवल के ऊपर इसको कैसे?
देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात पे बहुत खुश होते थे, वो था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वक्तन फक्तन इज्तमा होता रहे ताकि मुसलमानों की ताकत का मुजाहरा होता रहे। जो ईदेन की नमाज है, शहर से बाहर कलेक्टिवली पढ़ने का हुक्म, इसके पीछे एक बड़ी हिकमत यह है कि मुसलमानों की तादाद और उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होगा लोगों को। तो अगर हम कलेक्टिवली एक काम करते हैं जिसमें इज्तमाईयत का पहलू निकलता है, तो उससे यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होती है, उनकी उम्मत आज इकट्ठी है और उम्मत एक बड़ी तादाद में है। रह गया ये कि जब हम इकट्ठे हो के इस किस्म के जश्न बपा करते हैं तो खराबियां पैदा होने लगती हैं। तो उसके लिए जो लोग मुंतजमीन में से हैं, वो अगर इस बात पे कड़ी नज़र रखें कि इस किस्म की कोई हरकत ना होने पाए, तो यकीनन नहीं होगी। हम बड़े बावाकार तरीके से जश्न इज्तिमाई तौर पे भी मना सकते हैं।
इज्तिमाई के साथ तीसरा पॉइंट है सरकारी।
ये सरकारी तौर पर मेरे नज़दीक तो इस जश्ने वलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाना चाहिए। जब हमने बिल इसरार आइन में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लफ्ज ऐड कराया, तो फिर इसका इजहार हरकतों से होना चाहिए। इस्लाम क्या है, वह हम तक रब का भेजा हुआ एक दीन है जो हम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया, तो इस वजह से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान मंद हैं। तो फिर सरकारी सतह पर तो इसका ऐलान होना चाहिए कि साहब इसको सरकारी तौर पर मनाया जाएगा और उसका जाब्ता अखलाक जारी कर दिया जाना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं चूंकि इस्लाम में नापसंदीदा हैं या ममनू हैं, इसलिए इन चीज़ों की सख्ती से ममानियत है, न किया जाए, बाकी हर तरीके से उसको मनाया जाए।
जो है वो अपना बकरा या दुम्बा जो है वो पहुंच गया यतीम खाने और वहां पे 100 ऑलरेडी जिबा होकर पड़े हुए, तो ये जो चैरिटी को एक ऑर्गेनाइज करने का जो है सोसाइटी के अंदर, ये भी कुछ ऐसा कोई तरीका होना चाहिए।
ये जुमला मोतरजा के तौर पे बात कह रहा हूँ, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, ना इसमें कोई मायने छुपे हैं कि हम भी खूब कौम हैं, हम पे कोई मुश्किल आन पड़े तो बकरों की शामत, हम खुश हों तो बकरों की श्यामत, जुमला मतरजा था इससे। आई नेवर मेंट इट एनीथिंग। बात यह है कि खैरात के सिलसिले में एसटीएन पर एक प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम चले, तो उनमें एक प्रोग्राम खैरात से मुतालिक भी था, तो मैंने एक उस वक्त गुजारिश की थी कि खैरात देना तो बहरहाल अल्लाह के नज़दीक बहुत ही एक मुस्तहसन और पसंदीदा कदम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा जोर दिया सदका और खैरात पे, लेकिन हालात के मुताबिक खैरात देने की सूरत तब्दील होती रहती है या हो जानी चाहिए। जो आज सूरत हाल चल रही है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तादाद इस वक्त 1.2 बिलियन है पूरी दुनिया में, और इट फॉर्म्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। 40% ऑफ पेट्रोल वेल्थ हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बड़े डाउन ट्रॉडन और बहुत ही निचले दर्जे के लोग गिने जाते हैं। अब वो जो हमें बहुत हकारत की नज़र से देखते हैं या वैसी समझते हैं, वो खुद क्या है इससे गर्ज नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हम दुनिया में ऊपर किस तरह से आ सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है, हमारी मस्कुलर पावर कम नहीं। तो उसमें मैं ये गुजारिश कर रहा था, 1.2 बिलियन बहुत सेहतमंद हेल्दी मुसलमान किसी की नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते, हमसे मुतासर नहीं होगा, क्योंकि आज की दुनिया में इंसान की असल ताकत मसल्स पर नहीं है बल्कि दिमाग में है। तो ये जो हम दरवाजे पर आने वाले या सड़क के किनारे खड़े हुए गदागरों को दो दो पांच पांच दस दस रुपए देते हैं, इससे कोई हमारा मकसद हासिल नहीं होता, इससे पावर्टी कम नहीं होती, भूख मिटती नहीं, लेकिन गदागरों की फौज हर साल बढ़ती चली जा रही है। तो अगर ये हम करने की बजाय हम में से इस वक्त भी तकरीबन 15% लोग पाकिस्तान में वो हैं जो फाइनेंशियली खासे एफ्लुएंट हैं, ऑन एवरेज हमारे यहाँ चार बच्चे एक घराने में गिने जाते हैं, तो जो 15% लोग हैं, अब हमारे यहाँ आबादी है 16 करोड़ की, तो अगर हम 16 करोड़ में 15% निकाल लें तो 2 करोड़ 40 लाख लोग बनते हैं। अब इसमें अर्निंग हैंड्स जो हैं उसको अगर हम देख लें कि 50% ख्वातीन हैं, 50% मर्द हैं, तो 8 करोड़ मर्द रह गए। इसमें हमारे यहाँ तकरीबन कोई 80% बच्चे और बूढ़े और वो लोग हैं जो नॉन अर्निंग हैंड्स हैं, तो 20% 16 करोड़ का, दैट इज 3 करोड़ एंड 20 लैक्स। अब 3 करोड़ एंड 20 लैक्स अर्निंग हैंड्स में से अगर 15% देख लिए जाए तो ये 4.7 मिलियन लोग बनते हैं जो फाइनेंशियली एफ्लुएंट हैं। तो अगर हम ये समझ लें वो 4.7 मिलियन लोग कि हमारे चार बच्चे नहीं बल्कि पांच बच्चे हैं, तो अपने उन अजीज व अकरबा में से जो फाइनेंशियली उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, या अपने मुलाजमीन में से एक बच्चा पिक कर लें जो टैलेंटेड है, पढ़ना चाहता है, तो जिस इंस्टीट्यूशन में हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं उसी इंस्टीट्यूशन में उस बच्चे को दाखिल कर दिया जाए और बिल्कुल उसी अंदाज में उसकी तालीम व तरबियत होती चली जाए जिस अंदाज में हमारे अपने बच्चों की हो रही है, और फिर उसके रुझानात देखकर इन बच्चों को अप्लाइड साइंसेस में सुपीरियर एजुकेशन के लिए दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज में भेज दिया जाए। तो सिर्फ 18 साल के बाद हर साल 47 लाख डॉक्टर कदीर खान पैदा होना शुरू हो जाएंगे और अगले 10 साल के अंदर अंदर मगरिब हमारे कदमों में होगा। ये सिर्फ 30 साल का प्रोग्राम है, 30 साल के बाद पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड आपके कदमों में होगी और 30 साल के बाद पाकिस्तान किसी से कर्ज नहीं मांग रहा होगा बल्कि अमेरिका पाकिस्तान से कर्ज मांग रहा होगा। तो वो जो कंसेप्ट है खैरात का इस्लाम के अंदर, बात सिर्फ ये है कि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा चैनलाइज कर दिया जाए आज की जरूरत के मुताबिक। मैं चेंज कंसेप्ट चेंज करने को नहीं कह रहा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इस्लाम का, इसकी तरगीब बहुत दिलाई है इस्लाम ने, इसे सिर्फ चैनलाइज कर दिया जाए आजकल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाएगा पूरी मुसलमान उम्मा का उठने का। क्योंकि ये सिर्फ, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा था कि 30 साल के बाद आपके पास 4 करोड़ और 70 लाख डॉक्टर कदीर खान होंगे, इन 4 करोड़ 70 लाख डॉक्टर्स का इम्पैक्ट पूरी मुसलमान उम्मा पर आएगा और जो कुछ आप मुसलमान उम्मा के अंदर पाकिस्तान में जो सीखते हैं वो फैला दीजिए तो पूरी मुसलमान उम्मा उठ खड़ी होगी। खैरात के बारे में तो मेरा कंसेप्ट ये है, अस्पताल, यतीम खाने ठीक है, ज़रूरी हैं, लेकिन एक लागर, कायदे आज़म क्या थे, मस्कुलर पावर में लागर थे, लेकिन एक तनतनहा शख्स ने हिंदू और अंग्रेज को शिकस्त दे दी है सिर्फ इंटेलेक्चुअल पावर के जोर पर। and that was through his education and through his early days training by Englishmen. उन्हीं की दीवी तरबियत से शिकस्त दे दी उन्हीं को. ये हरबा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा हमें सीख लेना चाहिए, कायदे आजम से सीख लेना चाहिए. तो खैरात का ये पहलू बहुत कंस्ट्रक्टिव है, इस पर अमल अगर हम करना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी. ज़कात के अंदर भी मैं एक गुजारिश कर दूं कि हमारा कंसेप्ट उस पर भी कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है. हम में से एक बहुत बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि ज़कात सिर्फ उस पर लागू है, उस माल पर जो हमने बचा रखा है. या यूं कहिए कि ज़कात को दर हकीकत हम में से एक बहुत बड़ी अक्सरियत सेविंग्स टैक्स समझती है, कि वो बचत जो एक साल तक हमारे पास मौजूद रहे ज़कात उस पर लागू है. ऐसा नहीं है. इसके अलावा भी और कई मदें ऐसी हैं जिस पर ज़कात लागू होती है. अगर उन तमाम मदों पर ज़कात दयानदारी से हर शख्स अदा करने लगे तो उससे इतनी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होनी शुरू हो जाएगी कि वाकई ही गुर्बत जड़ से निकल जाएगी. लेकिन हम में से बहुत बड़ी अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो सिर्फ इसको सेविंग्स टैक्स समझती है. ऐसा नहीं है. इसी तरह वो जो अल्लामा ने असल में अपनी शायरी के अंदर कभी मोमिन की तारीफ बयान की, कभी कुरान को सामने लाए, वो प्रॉब्लम एक ही को अल्लामा इकबाल भी पीटते रहे हैं सारी उम्र. उनका शिकवा और जवाब शिकवा अगर सुन लें, पढ़ लें, तो सारा भेद खुलने लगता है कि उनकी शायरी की तमाम तर उसमें बेसिक कंसेप्ट क्या था. अल्लामा को भी हमसे एक ही गिला रहा कि हम में जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो समझते नहीं, और जो फिकह और हदीस की तालीम लेते हैं वो भी उसकी तालीम तो लेते हैं, अमल उस पर अमल दरामद नहीं. कुरानी तालीमात पर हम अपनी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा अमल नहीं कर पाते सिवाय एक इबादत के हिस्से. तो वो गिला एक ही करते रहे सबसे, उनको एक ही शिकवा रहा हम मुसलमानों से कि कुरान को अपनी पूरी ज़िंदगी पर मोहित नहीं हम कर रहे. वो सूरत हाल आज भी मौजूद है कि कुरानी अहकामात पर अमल पैरा पूरी तरह हम नहीं हो पाते. एक छोटी सी चीज़ जिसको इस्लाम बड़ी शिद्दत से कंडेम करता है वह है दूसरे का हक मारना. अब ये सिर्फ एक एस्पेक्ट जो है कि दूसरे का हक ना मारा जाए, उसी को अगर हम एक्सरसाइज करना शुरू कर दें अपनी ज़िंदगी में. और हक मारना सिर्फ यही नहीं कि हम किसी की जायदाद पर कब्ज़ा ना करें, हम किसी के हिस्से का रुपया पैसा ना उठा के ले जाएं, बल्कि इसका इत्तलाक इस पर भी होता है कि हम जो अपने घर के फर्श धोते हैं तो उसका पानी जब हम वाइपर से समेटते हैं तो पड़ोसी के घर के आगे फैला देते हैं. ये इस पर भी इसका इत्तलाक होता है कि अगर एक बंदा ट्रैफिक लेन की पाबंदी कर रहा है तो हम उल्टी तरफ से ओवरटेक करके आके उसके सामने गाड़ी नखड़ी कर दें कि सिग्नल खुलने की सूरत में मैं पहले निकल जाऊं. यह हक तलफी है. कतार बना के हम खड़े हैं, लोग क्यों जंप करते हुए आते हैं, और ये सब हक तलफी के ज़िम्मे में आता है. तो अगर सिर्फ एक यही पहलू इसी पे अमल करना शुरू कर दें, बाकी इसके बाद अगर शुरू करें तो ही हमारी ज़िंदगियां बदल जाती हैं. तो वो एक लंबी बहस है, तो इंशाल्लाह जिस पे बात करेंगे.